नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज कार्यक्रम छू लो आसमान में आपसे रूबरू होंगे श्री वत्सल अशर, CEO एंड फाउंडर DMA एशिया के हैं और उनके साथ है शैली सिंह जो को फाउंडर DMA एशिया। इनसे बातचीत कर रहे हैं विकास मिटिसन, CMD नसारा टेक्नोलॉजीज, President IBG and the Honorary Consul of the Republic of Mali. चलिए सुनते हैं छू लो आसमान।
हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। राज कोई राही समझा है न जाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है, संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 ला
आज हमारे साथ हैं शैली, ये हैं कनाडा से, और वत्सल जी, ये दोनों जन जो हैं एक एसोसिएशन चलाते हैं, बड़ा यूनिक एसोसिएशन है, मार्केटिंग बाया डिजिटल, जो आज और फ्यूचर का है। वेलकम टू ऑल इंडिया रेडियो, आप लोग आए अपना टाइम निकाल के।
थैंक यू, ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आज आपके साथ हैं, इतने वरिष्ठ लोग ये शो पे आए और हमें आज यहाँ आने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो का और विकास जी आपका ये शो पे हमें बुलाने के लिए।
मुझे तो मेरे ख्याल से आप अभी जानते हैं, 55 शो कर चुका हूँ आपके साथ, विकास मिथसेन, आई एम द चेयरमैन ऑफ नजारा टेक्नोलॉजीज एंड फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ IBG। थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ भी हर हफ्ते आता हूँ।
बिल्कुल,
आपका बैकग्राउंड बताइए शैली जी।
थैंक यू सो मच विकास जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके आपसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में शेयर करने के मौका दिया है आपने, थैंक यू सो मच। मैं अपने बारे में ये बताऊंगी कि शुरुआत करती हूँ कि मेरा जन्म स्थान जो है वो लुधियाना सिटी है, जो कि पंजाब का सिटी है। उसके बाद फिर मेरा पढ़ाई जो है वो मैंने चंडीगढ़ में की, मेरा करियर की शुरुआत भी चंडीगढ़ से ही हुई है और मैंने मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर मीडिया में मेरी फर्स्ट जॉब थी। वहाँ पर मैंने बच्चों का जो प्रोग्राम है वो लोग करते हैं उनको, उसको जिसको पेस कहते हैं, न्यूज़पेपर इन एजुकेशन प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को आई वॉज हेडिंग देयर और उससे मेरे को बहुत अच्छा एक लर्निंग मिला उस पहली जॉब से। वहाँ मैं बच्चों के साथ काम करती थी और स्कूल्स में जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था। तो ये मेरा पहला शुरुआत था मेरे करियर का। उसके बाद फिर मैंने जॉब चेंज किया और मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आई वाज हेडिंग एड सेल्स। ये मेरी जो है चंडीगढ़ का करियर है। उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि मुझे अभी किसी बड़े शहर में जाना चाहिए, तो फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया किसी बॉम्बे में या दिल्ली में, ताकि मैं अपने करियर को और एडवांस कर सकूँ। तो मुझे मौका मिला रिलायंस रिटेल में काम करने का। तो मैं फिर उसके बाद चंडीगढ़ से बॉम्बे में मूव हो गई और वहाँ पे मैंने अपनी करियर को आगे शुरू किया रिलायंस रिटेल में। और मुझे कुछ रिटेल के बारे में बहुत अच्छा लर्निंग का मौका मिला और कंपनी एज यू नो मुकेश अंबानी की वो कंपनी है, तो बहुत ही काफ़ी ग्रोथ का मौका था और बहुत सीनियर लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और जो मेरे बॉस थे वहाँ पे वो वत्सल आचार्य ही थे। मैंने इनके अंडर काफ़ी कुछ इनसे सीखा, बहुत मेंटरशिप मुझे मिली इनसे और बहुत कुछ करने को मिला। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा एक स्टेप रहा रिलायंस रिटेल में काम करने का बॉम्बे में।
हम आपके पास आप ये चीज रेडियो पे बता रहे हो, आप पीछे मुकर नहीं सकते हो फिर इस बात से।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
आप तो बॉम्बे के ही हैं शायद।
मैं बॉम्बे से बला पड़ा हूँ और 43 इयर्स हो गए मुझे बॉम्बे से रहते हुए, लेकिन वो बॉम्बे 25 साल पहले का बहुत अलग था और आज का बहुत अलग
बॉम्बे था। ये मुंबई है,
ये बॉम्बे था, ये मुंबई है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। लेकिन बॉम्बे की जान फिर भी कहीं ना कहीं उसमें बसी हुई है, दैट इज कीपिंग द सिटी गोइंग. बट सिटी ने तो मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, बट मेरा प्रोफेशन, मेरी जो मेमोरीज है, जो फॉन्ड मेमोरीज, और जो हम एसोसिएशन चलाते हैं, जो शैली ने बताया, वो कहीं ना कहीं मेरे बचपन से जुड़ी हुई है. मैं करीब करीब फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, तब हम लोग ने जो होली होती है बॉम्बे में, उसका कार्यक्रम होता है, तो उसका कम्युनिटी गैदरिंग और कम्युनिटी स्नैक प्रोग्राम जो होता है वो किया था. फिर आठवीं में आया मैं, एट स्टैंडर्ड में, तब हमने गणपति का आयोजन किया था, सार्वजनिक गणपति का, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए. जब तक मैं कॉलेज में आया तब तक हमने नवरात्रि का ऑर्गेनाइजेशन करने की शुरू की. तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये एक कम्युनिटी के साथ काम करने का बचपन से ही शायद एक बेंट ऑफ माइंड रहा है. मेरा जो सबसे पहला तजुर्बा है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, वो था जनरल इलेक्शंस थे हमारे यहाँ महाराष्ट्र कंट्री में, और स्टेट इलेक्शंस भी थे, 91 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन 1991 की, उन दिनों में घर घर पे जाके वोटर बूथ कार्ड्स देके आना, कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग करना, दीवारों पे पोस्टर तक लगाने के काम से शुरू किया है मैंने अपना करियर, और वहां से मैंने 1-to-1 मार्केटिंग सीखी है. आज लोग जाके इसको एक फैंसी नाम से, एक बड़े अच्छे, और इसको साइंस बना दिया है पिछले 30 सालों में, इस जो ये एज ओल्ड ट्रेडिशन है उसको उसको कहते हैं आज की तारीख में हम डेटा ड्रिवन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, या तो उसको डिजिटल मार्केटिंग के फॉर्म में लूजली कहा जाता है. तो वो है मेरे करियर की शुरुआत. मैं इतना शैली जितना लकी नहीं रहा हूँ कि मुझे छोटा शहर, बड़ा शहर, मुंबई के ही अलग अलग हिस्से हैं, जो कहीं गांव है, कहीं शहर है मुंबई के अंदर, तो वो मेरा तजुर्बा रहा है. और हाँ, मैं बहुत लकी रहा हूँ, जब मैं भी रिलायंस रिटेल में था, एक हाई ग्रोथ एनवायरमेंट की कंपनी में, एक जो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ में बहुत सारे अच्छे तजुर्बे के लोग हैं, इंटरनली यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ टू बी द बेस्ट. सो शैली, थैंक यू, तुम्हारी बहुत मदद और मॉरल सपोर्ट मुझे रही वहाँ पे, और बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया हमने.
यस, यू वेलकम. सो
शैली, हम, मैं और शैली करीब करीब अभी कम से कम 15 ईयर्स से, 15 साल से तो फॉर्मली जुड़े हुए हैं काम के सिलसिले में.
नाउ इट्स मोर लाइक अ फैमिली. या
सो ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल मिलता है, यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल. कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल मिलता है, यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल. इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस. कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस. बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके, कहे इसको बिजनेस. बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके, कहे इसको बिजनेस.
एक चीज कहे कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान। दुनिया वो है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान।
ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान।
ऐ दिल है जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु ये है बॉम्बे मेरी जान।
दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान।
शैली जी, आई एम कमिंग बैक टू यू। आपको मैंने आधे में इंटरप्ट कर दिया था।
नो नो प्रॉब्लम।
उसके बाद आपने क्या करा? कनाडा में है, हाँ। तो वहाँ कैसे पहुँच गए?
सो मेरी कहानी इसके आगे ऐसे है। रिलायंस रिटेल में बॉम्बे में काम किया, उसके बाद एक और मैंने जॉब चेंज किया, आई वेंट टू पूना। सो मैंने दो साल पूना में भी बिताए हैं।
वो पुणे हो गया,
पुणे, यस, या तो पुणे में मैंने वहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर ग्रुप का एक है ईशान्या, बहुत बड़ा मॉल है, तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और एक मॉल मार्केटिंग का काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला। हम लोग वहाँ पे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते थे, जैज फेस्टिवल होता था वहाँ पे हर साल। अच्छा। जो कि अलग अलग कंट्री से लोग आते थे, जैज म्यूजिक के जो एक्सपर्ट्स हैं सारे वो लोग म्यूजिक से भी जुड़े रहे। काफ़ी सारे इवेंट्स में बहुत काम किया। पहले भी जो मेरी करियर की शुरुआत हुई हिंदुस्तान टाइम्स में, उसमें भी मुझे बहुत मौका मिलता था इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का, जैसे बच्चों के साथ पेंटिंग कॉम्पिटिशन या म्यूजिक का फेस्टिवल। और फिर उसके बाद पूना में मेरे को इसका ऊपर काफ़ी काम करने का मौका मिला, बिकॉज वत्सल भी वहीं पे जॉब कर रहे थे, अगेन ही वॉज माई बॉस देयर। तो पूना में तो इनको ये हुआ कि हम क्यों नहीं अपना कुछ करते, यू नो, क्योंकि बहुत एंटरप्रेन्योरशिप इनके अंदर है। और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि चलो ये जॉब छोड़ते हैं, कुछ अपना शुरू करते हैं। तो वो उन दिनों में ही मैंने अपना इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था कनाडा में, बिकॉज मेरी वहाँ सिस्टर है और मेरा जो बेटा है वो वहाँ बाहर की पढ़ाई करना चाहता था। सो मैंने ये सोचा कि चलो अप्लाई तो किया ही हुआ है, तो सडनली मेरी एप्लीकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर आई थॉट कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी और आगे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि वो यू नो अच्छी एजुकेशन ले सकता है और उसका करियर की अच्छी शुरुआत, आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। इसीलिए फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कनाडा में सेटल हो जाना चाहिए। तो मैं कनाडा में सेटल हूँ, लेकिन अभी भी इंडिया के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ, बिकॉज मैं और वत्सल मिलकर हम लोग जो DMA चला रहे हैं, एसोसिएशन चला रहे हैं, उससे मुझे बहुत मौका मिलता है वापस इंडिया में आने का। मेरे पेरेंट्स यहीं पे हैं, मेरी सिस्टर यहाँ पे है,
तो
नहीं वो लोग दिल्ली में हैं और वो वहाँ मूव हो गए हैं चंडीगढ़ से, और फिर उनके साथ उनकी भी थोड़ी सेवा करने का मौका मिल जाता है, उनके साथ टाइम स्पेंड, बिकॉज काफ़ी ओल्ड हैं वो अभी, और तो उनके साथ काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है। इसी बहाने तो मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं कनाडा में तो रह रही हूँ, लेकिन मैं इंडिया के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ।
दुनिया की सैर कर लो, 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 इंसान के दोस्त बन कर इंसान से प्यार कर लो।
दुनिया की सैर कर लो, 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 इंसान के दोस्त बन कर इंसान से प्यार कर लो।
Around the world in $8. Around the world in $8.
यहाँ हॉलीवुड है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर।
लॉस एंजेलिस भड़केला, जहाँ हॉलीवुड है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर।
दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर। वाशिंगटन अलबेला, न्यूयॉर्क शहर का मेला। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर्स, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर्स, अराउंड द वर्ल्ड इन शाम मस्तानी। कुदरत के ये खेल निराले, जरा देख ले देखने वाले। बर्लिन का बदलता चेहरा और रोम का रंग सुनहरा, वेनिस में नाव की तैरें, ये गीत गाती हुई लहरें। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर।
सर जी ये बताइए, आप ये ऑर्गेनाइजेशन तो चला रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ 5-6 साल से, शायद ज़्यादा टाइम हो गया है, ये लॉन्ग डिस्टेंस मैनेजमेंट कैसे होता है एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का? क्या करते हैं, रोज फोन पे बात करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, हाउ डज इट वर्क?
जैसे विकास जी, ये श्रेय मुझे सुनने वाले श्रोता है उनके साथ शेयर करना पड़ेगा कि डीएमए का जो इंस्पिरेशन है वो मैं बहुत बार बहुत पब्लिक फोरम्स पे बता चुका हूँ, और आज मैं वापस गर्व के साथ ये बता सकता हूँ कि इंस्पिरेशन जो है वो IBG है। जब हम 2011-12 में हमारी जॉब्स चेंज करके ये करने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमारे जो कॉमन फ्रेंड है संजीव जी, जो ये अर्स्टवाइल डीएमए के फाउंडर डायरेक्टर है, उनको आपने कोई न्योता भेजा हुआ था IBG के मीट का, एंड कोई कॉन्सुलेट यूके या किसी की मीटिंग थी उसमें, तो संजीव जी ने मुझे नॉमिनेट करके भेजा था वहाँ पे आपके IBG के फोरम पे, और मुझे वो जो माहौल और वो जो वार्म्थ वहाँ देखने को मिली और सीखने को मिली, मैं बहुत मोटिवेट हुआ उस चीज़ से। मैंने कहा ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं कोई एजेंडा से नहीं आए लेकिन एक पर्पस से आए हैं कि आईबीजी ने एक कुछ अच्छा काम किया है, यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा या जानने को मिलेगा, और सीखने और जानने से ज्यादा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही थी कि हम एक सही ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलेंगे, एंड इट वाज नॉट इंट्रूसिव और अ कमर्शियल काइंड ऑफ अ थिंग।
और सबसे बड़ी जो एक चीज हमें नजर आई वहां पे कि आपकी जो पर्सनल टच थी सबके साथ वो हमें बहुत इम्प्रेस किया उसने, कि जिस तरह से आप हर किसी से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तो हमने बहुत सीखा उससे भी।
आप भी आए थे शैली वो मीटिंग में, तो उस वो फॉर्मेट को हमने इम्बाइब कर लिया, हमने आपसे स्टील कर लिया या इंस्पायर हो गए। हमने वैसे 86 इवेंट्स पिछले साल में किए, उसको हमने नाम दिया है डीएमए अनकॉन्फ्रेंस एंड अनवाइंड, क्योंकि वो ना कॉन्फ्रेंस था ना मीटिंग था, लेकिन वहां पे सेशंस भी हो रहे थे, लोग टॉपिक स्पीक भी कर रहे थे, बातें भी हो रही थी, चर्चा भी हो रही थी, एजुकेशन भी था, लेकिन खाना पीना भी था और अनवाइंड भी था, और लोग बहुत खुश होके जा रहे थे। मैं पहली बार ऐसे कोई इवेंट में गया जहाँ पे लोग शाम के 6 बजे से रात को 11 बजे तक बैठे और दे आर वेरी हैप्पी विद स्नैक्स एंड स्टार्टर्स एंड ड्रिंक्स एंड रियली नोबडी केयर्ड अबाउट द डिनर दैट कुड हैव बीन अवेलेबल। तो हमने ये फॉर्मेट इम्बाइब कर लिया, और नॉट ओनली डीएमए बट मार्केटिंग के जितने और एसोसिएशन है इंडिया में वो हर किसी ने ये फॉर्मेट का एक वेरिएशन चलाने की जरूर कोशिश की है। तो विकास जी आपने तो मार्केटर्स की फ्रेटर्निटी के लिए बहुत सेवा किया मैं इंस्पायर करके, और उतना ही नहीं, मैं मेरे को जब मौका मिलता है मैं आप अभी जो नए नाम से उसको चलाते हैं पॉट बॉयलर या तो वो भी काफी साल हो गए जो ये नाम से आप चलाते हैं, मैं जब भी आता हूँ क्वालिटी ऑफ ऑडियंस जो हाई क्वालिटी ऑफ ऑडियंस है, तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि जो
लेवल
इस कंट्री के जो वरिष्ठ मार्केटियर्स है, जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स है बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो लोग आए, वो लोग अच्छी बातें करें, उनको रेलेवेंट बातें करने के लिए इंटरनेशनल स्पीकर, जो हम आपके जितने इंटरनेशनल डिग्निटरीज नहीं बुला पाते हर बार, लेकिन जरूर कभी ना कभी ये लोग भी आ जाते हैं हर साल में, नॉट ऑन एवरी ओकेजन बट ऑन मेनी ओकेजन आई वुड से। So this is very exciting. I think the beauty part of it is just like मेरे को ध्यान नहीं है कि 7 साल में IBG से किसी ने मुझे फोन किया हो कि आप पैसे दे दो या membership ले लो या renewal करा लो, and everything that one does at the IBG is voluntarily. तो हमने भी हमारा DMA का model जो है वो voluntary रखा हुआ है कि जिन लोगों जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जरूर जुड़े और साथ में हाथ बटाए, और हम कोशिश यही करते हैं कि आज जो मार्केटर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उन कंज्यूमर्स को हेल्प करना सही खरीदारी के लिए चुनाव करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और हमारे फ्यूचर जनरेशन जो हमारी एडवर्टाइजमेंट्स होती है उनसे वो फ्यूचर जनरेशन पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं कि एड्स है व्हाट काइंड ऑफ रोल मॉडल्स दे आर मेकिंग, व्हाट इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि कंज्यूमर्स तक सच पहुंचे और उस तरीके से पहुंचे कि वो अच्छा चुनाव कर सके।
ऑन द कॉन्ट्ररी मैं कई बार लोगों को बोलता हूं
जी
कि भी अगर डिजिटल मार्केटिंग का आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन देखना है तो वत्सल जी और शैली जी के पास जाइए और उनका इवेंट्स को अटेंड करिए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं देखा
है। सही है, थैंक यू, थैंक यू विकास जी, इट इज आपके जैसे सीनियर लीडर के पास से ऐसी बातें आना
मत यूज करो, ये लोग सोचेंगे कि कोई बूढ़ा आदमी
बैठा है। नहीं नहीं नहीं, वेरी यंग एंड यंग एट हार्ट। इनफैक्ट हमारा जो कल इवेंट हुआ उसके बारे में मैं बहुत प्राउडली बताना चाहता हूँ। सो हमारे जो ग्रैंड जूरी चेयरपर्सन थे हमारे, हम एक अवार्ड्स प्रोग्राम करते हैं हर साल एक इंटरनेशनल अवार्ड शो के साथ, ये अफिलिएटेड है, ये डीएमए क्रिएट इफेक्ट अवार्ड्स है और एको के साथ ये अफिलिएटेड है। तो सिमिलर इंडस्ट्री लीडर्स लाइक यू, जैसे संजय बैल जी है रेमंड्स के जो सीईओ है वो हमारे ग्रैंड जूरी चेयर है, और मैकैन लिंटास डेंसू इन सारी एजेंसीज के सीईओज और चेयरमैन जो है वो बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि एक क्रेडिबल अवार्ड शो चलाने की, इंडस्ट्री में लोगों को जो रियल हंगर होती है वो होती है कि पीयर रिकग्निशन मिले उनके अच्छे काम के लिए। ऑफकोर्स उनके कस्टमर्स तो उनकी तारीफ करते हैं जब उनके उनका उनका बिजनेस आगे बढ़ता है, लेकिन उसका ट्रू वैलिडेशन इनको तब मिलता है जब इनके पीयर्स इनकी ये बातें एक्नॉलेज करें।
ये जीवन है सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यू ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। द्वार से घन से न दुनिया से घर से न द्वार से सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से, दुनिया छूटे पर ना टूटे ये ऐसा बंधन है ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है।
क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि हमेशा मार्केटिंग जो था वो फिजिकल फॉर्म में था, या तो लोग जाते थे या मेडिकल कंपनीज के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, ये कब मूव हो गया डिजिटल और क्या एग्जैक्टली है ना डिफरेंस आपको दिखता है अभी पुराने 10 साल पहले का और अभी का?
क्या सर, जो मीडियम्स थे पहले वो हम न्यूज़पेपर बोलते थे, तो शुरुआत करें तो पोस्टकार्ड सबसे पहला मीडियम था, लोग एक लेटर भेजते थे, खत भेजते थे कि ये सामान खरीद लो, चिट्ठी होती थी। उसके बाद आया रेडियो जहाँ पे मास कम्युनिकेशन शुरू हो गया, उसके बाद आया टेलीविजन, और जब इंटरनेट आया 1995 के आसपास, और फिर जब सोशल मीडिया का एडवेंट हुआ 2007 के बाद से, तो पिछले 10-12 साल में जो प्रोग्रेस जो हुआ है, जैसे आप देखेंगे कि पिछली सेंचुरी में जो इन्वेंशंस हुए उसको कमर्शियलाइज करते करते 30-40-50 साल लगे हैं। जैसे प्लेन तो लोगों ने बना लिया था 1910 के शतक तक, लेकिन उसको कमर्शियलाइज करते करते 40 साल लग गए, 1950-55 के आसपास कमर्शियल फ्लाइट शुरू हुई। सो इन द लास्ट सेंचुरी द टाइम टू मार्केट वॉज अबाउट 40 ईयर्स। इस सेंचुरी में जितने इन्वेंशन होने हैं वो सारे इन्वेंशन हो चुके हैं और टाइम टू मार्केट बहुत रिड्यूस हो गया है। तो पहले
लेकिन बोलिए,
हाँ जी, तो टाइम टू मार्केट कम हो गया है, इसकी वजह से एडॉप्शन का रेट फास्टर हो गया है, और जो चीजें पहले हमें ढूंढने के लिए कोई चीज का क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो हमें किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाना पड़ता था, आज आप ऑनलाइन जाके वो चीजें देख लेते हो। दूसरी चीज ये होती है कि ऑनलाइन जो मेथड है या इंटरनेट के जरिए जो मार्केटिंग होती है उसमें कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जो है वो समझे जाते हैं, उनके बाइंग हैबिट्स, रीडिंग हैबिट, परचेज हैबिट्स सारा पता होता है, बिकॉज आपकी, हालांकि ह्यूमंस नहीं रीड करते हैं लेकिन मशीन लर्निंग और जो आपकी ईमेल्स वगैरह रीड होती है, तो जैसे अब आपके पास आपकी प्रेफरेंस है, आप मर्सिडीज में जाते हैं तो मर्सिडीज वाले आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको उस श्रेणी की चीजें, उस लेवल की होटल बताएंगे। लेकिन अगर और कोई आदमी है जो एक नॉर्मल छोटी गाड़ी चलाता है तो उसको उसकी प्रेफरेंस और उसकी पॉकेट साइज के हिसाब से एड्स बताई जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो क्लटर होता था पहले, हम टेलीविजन पे क्लटर देखते थे, बहुत सारी एड्स हमारे रेलेवेंस की नहीं होती थी, आज डिजिटल में वो आपको सर्व ही नहीं की जाती है वो एड्स, तो आपको जो कंटेंट है, नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग बट कंटेंट का जमाना आ गया है, तो कंटेंट जो सर्व किया जाता है इज टेलर्ड कस्टमाइज्ड टू दैट वन सिंगल पर्सन। जैसे बोलते हैं ये कि अमेजोन जैसी कंपनी है वो लोग ने 100,000 कस्टमर परसोनास बनाए हैं। जैसे एक आम कंपनी होती है वो 4 या 5 कस्टमर परसोना बनाती है, ये लोग ने 100,000 कस्टमर परसोनास बनाए। जैसे आप नेटफ्लिक्स का प्लेलिस्ट देखेंगे वो आपके लिए अलग आएगा, मेरे लिए अलग आएगा। सो वो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हाइपर पर्सनलाइजेशन हो गया है, हाईली टारगेटेड, ताकि आपको सही सूचना मिले, सही टाइम पे आप सही डिसीजन ले सके। तो और इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि डेटा एक जमाने में बहुत महंगा हुआ करता था। जब इंटरनेट आया यहाँ पे तो बहुत कम डेटा के लिए लाखों रुपए देने पड़ते थे। जो चीजें हमारी कंट्री में हुई है, जैसे 4G रेवोल्यूशन, सबसे फास्टेस्ट एडॉप्शन ऑफ 4G अक्रॉस द वर्ल्ड विद 125 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है हमारे पास। तो गांव-गांव में, नुक्कड़ पे, हर जगह पे, हर किसी के हाथ में 4G कनेक्शन आ गया है। देयर इज अ ह्यूज एडॉप्शन ऑफ फास्ट इंटरनेट
फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल।
तो आज ज्यादा करके चीज, आज जो मिलेनियल्स है, जो यंगर जनरेशन है, वो लोग ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना टीवी देखते हैं, दे आर ऑन द स्मॉल स्क्रीन। और अगर टीवी भी देखेंगे तो सेकंड स्क्रीन लेके बैठते हैं, साथ में आईपैड होगा या मोबाइल होगा साथ में। सो आज मल्टी स्क्रीन का जमाना आ गया है घर पे, और जो कंजम्पशन हैबिट है कॉन्टेंट की वो काफी चेंज हो गई है। तो अभी कोई कैंपेन ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक मीडियम के ऊपर निर्भर करता है। तो एक जो एडवर्टाइजिंग का कैंपेन होता है उसको मल्टीपल चैनल यूज करने पड़ते हैं। जैसे आप देखोगे आउटडोर पे भी QR कोड लगा होगा कि ये स्कैन कीजिए और ये जीतिए या इधर एंगेज करिए। तो ब्रांड्स और कंपनीज की कोशिश यही रहती है कि सबसे ज्यादा कैसे एंगेज किया जाए। तो डिजिटल सिर्फ एक और एक मीडियम है, माध्यम है, जैसे टीवी है, जैसे रेडियो है, वैसे डिजिटल एक माध्यम है।
एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहती हूँ कि डिजिटल से क्या हो गया है कि हम लोग जो पहले मार्केटिंग करते थे, एडवर्टीजमेंट करते थे, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या रिजल्ट आया, वो नहीं पता चलता था। लेकिन डिजिटल के माध्यम से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, कस्टमर की रिस्पांस कितनी है, कितना आपको सेल्स हुआ है, उसके ऊपर कितना फ़ायदा हुआ है, कितनी ब्रांड वैल्यू हुई है, या आपको कितने लोगों ने लाइक किया है, वो सब कुछ जो है वो मेजरमेंट बहुत उससे इजी हो गया है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो गई है, पहले एड्स एक्सपेंसिव थी, अब जो डिजिटल एड्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, लोग अफोर्ड कर पाते हैं, हर कोई एडवर्टीजमेंट दे सकता है उसके, चाहे थोड़ा बजट हो। जैसे फेसबुक पे आप देखो कि आप उसमें कितने
500 रुपये
का आप एड भी दे सकते हैं और आप 5 लाख का दे सकते हैं। सो वो सारा बहुत उससे, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि वो बेटर हो गया है
मार्केटिंग में, करीब करीब रेवोल्यूशन जैसा हो गया।
हाँ जी, लेकिन हमारी कंट्री में ड्यूओपोली जैसी सिचुएशन है बाकी और जगह की तरह। और कल शैली आपके पैनल पे जो चर्चा हो रही थी कि गूगल इंडिया के रेवेन्यू 7,000 करोड़ के करीब है और फेसबुक के रेवेन्यू 5,000 करोड़ के करीब है, सो इसका मतलब है कि बाजार में पैसा तो है, लोग खर्च करना चाहते हैं, लोग अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, बस एक ये सेंटिमेंट की बात है। अगर सेंटिमेंट, क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि हमारी गवर्नमेंट मेहनत तो बहुत कर रही है, काम तो बहुत कर रही है, वो सोक इन होने को, क्योंकि बिग इनिशिएटिव्स है तो ओवरनाइट तो बड़ा मजबूत पेड़ नहीं खड़ा हो जाएगा, वो धीरे धीरे हो रहा है, तो थोड़ा पेशेंस हो तो
सही बात है।
सबसे बड़ी जो एक हमें एक कमी महसूस होती है हमारी एसोसिएशन में, जब हम बात करते हैं या हम बाहर की एसोसिएशन जिनके साथ हमारे टाइप्स हैं, जैसे DMA ऑफ USA, UK और अदर जो यूरोपियन एसोसिएशन हैं, उन सब के साथ हम जुड़े हुए हैं एक फेडरेशन ऑफ ग्लोबल DMA के जरिए। तो उसके बोर्ड के ऊपर वत्सल जी हैं और हमारी मेंबरशिप है, एंड आई थिंक यू आर द फाउंडिंग मेंबर,
इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर फॉर ग्लोबल DMA। वो एक्चुअली संजीव जी ने बहुत सही काम किया था 1996 में, उन्होंने न्यू ऑर्लिंस में जाके ये ट्रीटी साइन करवाई थी 20 लोगों से। तो वो श्रेय तो संजीव जी को मैं देना चाहूंगा। वो 1996 पे जब मैं 2012 में आया तो मैं लंदन की मीटिंग में मैंने कहा कि इसको फॉर्मलाइज कीजिए, इसको स्ट्रक्चर दीजिए। तो हमने इसकी जो फाउंडिंग पिलर्स थे वो ऑस्ट्रेलियन DMA में शुरू किए वहाँ पे, और अभी नया इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हेडक्वार्टर अभी ब्रसल्स हो गया है।
जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के ओ राही ओ राही
कह रही थी कि जो सबसे बड़ी हमें इंडिया में कमी महसूस होती है जिसके ऊपर आई थिंक सबको गवर्नमेंट को भी वर्क करना चाहिए कि यहाँ पे प्राइवेसी लॉस नहीं है कि आप GDPR देखिए यूरोप में है या बाकी सारे जितने भी लॉस प्राइवेसी लॉस हैं वो कितने स्ट्रांग है उससे क्या है कि जो जो कंज्यूमर्स हैं कंज्यूमर्स को वो यू नो उनके जो डेटा है वो इतना सेफ होता है कि उनको उनको डर नहीं लगता कि जो मार्केटर्स है वो मेरे डेटा को अब्यूज करेगा मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे लीक करेगा तो वो सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है जितने भी DMAs हैं वर्ल्ड वाइड में वो काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग करते हैं प्राइवेसी लॉस के ऊपर गवर्नमेंट के साथ काफ़ी उनकी डिस्कशंस होती हैं वो लोग मिलके उनके साथ ऐसे लॉस लेके आते हैं जिनके जिससे जो मार्केटर्स हैं उनको भी नुकसान ना हो जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी नहीं वो हम चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन के ज़रिए अगर वैसा कुछ यहाँ पर हो जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई
बड़ी शिद्दत से हम राइट टू प्राइवेसी बिल का इंतज़ार कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा कंज्यूमर का ही होता है लेकिन एक सरकार की एक विल होनी चाहिए एक बैलेंस्ड लॉ लाने की जिससे मार्केटर्स प्रोहिबिट ना फील करने चाहिए बट जो लोग जो कंज्यूमर का डेटा है जिसको अब्यूज़ करते हैं वह उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए आज आपको आपके मेल बॉक्स पे दिन के 200 या कितने तो ईमेल्स आते होंगे जो आप इट बिकम्स अनबेरेबल तो ये प्राइवेसी लॉस से ये सारा जो क्लटर ऑफ इंफॉर्मेशन है जैसे पेस्की SMS का जमाना था एक
खत्म हो गया
वो एक पेस्की कॉलिंग का जमाना था वो बिल्कुल ख़त्म ही होने आया अभी ना के बराबर कॉल्स आते हैं अभी भी आ जाते हैं
अभी भी आ जाते हैं लेकिन
बट
डू नॉट कॉल में आप जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं जो उसके ऊपर कुछ
ये प्रोग्राम जो लोग सुन रहे हैं वो खरीदार है प्रोडक्ट्स खरीदते हैं डिजिटल एड्स कंज्यूम करते हैं मैं हम प्रोटेक्शन के जरिए यही बताना चाहेंगे क्योंकि इंटरनेट आपके हाथ में दिया गया है तो बहुत बड़ा पावर दिया गया है अभी आपके पास 4G कनेक्शंस है और आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आप जो कंटेंट कंज्यूम करना चाहेंगे उस पे पहली बात तो आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम कीजिए ऐसी सर्चेस कीजिए जिससे आपका नॉलेज बढ़े और आप राइट डिसीजन ले सके आप अगर डार्क साइड ऑफ द वेब में चले जाएंगे तो वहां पे टेम्पटेशंस भी काफी सारी है, जहाँ पे आप रॉन्ग दिशा में चले जाएंगे, शायद गैम्बलिंग, बी रिस्पॉन्सिबल इज द क्रक्स व्हेन यू आर यूजिंग इट, बी विजिलेंट अबाउट इट, अननोन लिंक्स अननोन फॉरवर्ड्स को मत क्या कीजिए. और जब तक ये जमाना हो गया है फेक न्यूज का, तो अगर आपको कोई व्हाट्सएप का फॉरवर्ड करता है, अगर आपको कोई मैसेजेस भेजता है जो रिलायबल और वेरीफाइड नहीं है, तो उसके बेसिस पे एक्शन मत लीजिए, वो चीज को वेरीफाई कीजिए. बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स है जो ये फेक मैसेजेस को किल कर रही है, तो ना रूमर स्प्रेड कीजिए, ना रूमर स्प्रेड होने दीजिए, और अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकिए वो करने से.
ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और मैं भी यही ब्लॉक कर देता हूँ. कोई भी मुझे फॉरवर्ड करता है जो इररिलेवेंट है, अनवेरीफाइड है, मैं उसको ही ब्लॉक कर देता हूँ.
करेक्ट,
कि ऐसा काम अलाउड ही नहीं, आई मीन मत करो ये सब काम.
बिल्कुल.
सो थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू विकास जी.
आपसे और बहुत बातें करनी थी, शायद मे भी 6 महीने के बाद अगले बार आप जब आए
जरूर
एक बार फिर से अपने कैचअप करेंगे.
yes. बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके. आपका और ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू सो मच विकास जी और ऑल इंडिया रेडियो टू.
लास्ट में मेरा सोशल मैसेज, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड. ये बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कई सालों से. ये कॉइन ही मैंने करा था, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, 30 ईयर्स बैक. मेरे लेटर हेड पे रहता था, मेरे विजिटिंग कार्ड पे रहता है. अभी तो गवर्नमेंट ने ये अडॉप्ट कर लिया है.
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए. कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे. तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे. एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए. जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले. जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले. वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ. जिंदगी कैसी है पहेली हाय.
तो दोस्तों, आज कार्यक्रम छूलो आसमान में आपने सुना वत्सल अशर, सीईओ एंड फाउंडर डीएमए, और शैली सिंह, को फाउंडर डीएमए एशिया। इनसे बातचीत कर रहे थे विकास मिटेसन, जो सीएमडी नजारा टेक्नोलॉजीज के हैं, प्रेसिडेंट आईबीजी एंड द ऑनररी काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली। और चलते चलते हम आपको ये बताएं कि हमारे निर्मिती सहायक थी सौलिया शेख, और एफएम गोल्ड की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।